tô te ajudando, confio.
Madeira, quem é? Não tem outro que vive.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على الرسول السخلين محبوب رب المشرقين المغربين جد الحسن والحسين أبو القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین سلوات پڑھیں
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
عزاداران امام، قبل اس کے کہ میں کچھ معروضے کروں، میں کچھ نام پڑھ رہا، آپ ان کے اوپر فاتحہ پڑھ دیں پلیز. گلستان ہند کے سارے مرحومین، سلیم دنامی، مرحوم محسن ابن پیار علی مسانی، موسیٰ بھائی، حجت الاسلام مولانا شیخ حسن موسیٰ اینڈ کل مرحومین، آل مرحومین، اور رضیہ نور محمد، ان کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کے لیے، اور آج جس کی پہلی رات ہے اس کے لیے سورہ فاتحہ. مومنین، ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں محمد والے محمد.
اللہم صل علی محمد وآل محمد.
عزاداران امام، گلستان ہند بامبے کی تیسری مجلس ہے، تھرڈ مجلس ہے، آن لائن ہو رہی، اور 1442 ہجرہ ہے 2020. میں نے مجلس کا آغاز پہلی مجلس سے ایک دعا سے کی، جو ایکسٹراآرڈنری دعا ہے جو عام طور پہ ہمارے پاس پڑھی نہیں جاتی. ہم کبھی بھی اس دعا کو اپنے روٹین لائف میں نہیں لے کے آتے. عجیب دعا ہے، دو دن سے آپ سن رہے کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین، کہ پروردگار ہم کو دنیا میں زیارت امام حسین نصیب ہو. عام طور پہ نہیں کرتے دعا، اس کے لیے کہا گیا. پھر اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین، آخرت میں، لائف آفٹر ڈیتھ میں مولا حسین کی شفاعت نصیب. عام طور پہ میں یہ نہیں بتا، کوئی نہیں کرتا، میجورٹی ہمارے ذہن میں بھی نہیں آتا یہ بات کہ میں بولوں کہ مولا میری شفاعت کر دینا. ہم نے تو گرانٹیڈ لیا اسلام کو، اپنے سارے اعمال کو ایسا گرانٹیڈ لیا کہ ہم کو تو کچھ ہونا ہی نہیں. مسلسل دعا کرو، اپنی خنوت میں پڑھو، خالی آپ کر کے دیکھو، یہ 24 گھنٹے اس کا ورد کرو، ورد کرو، اس کے بعد دیکھو کہ کیسے کیا حالات ہو گئے. دنیا میں زیارت امام حسین ہو جائے، ایک دفعہ کر کے ہم تھینک یو ویری مچ ہیں واپس. اس کے بعد ایوری ڈے دعا کرو. دیکھیں اسلام دعا، آپ مثال کے طور پہ آپ دعا کریں کہ مولا مجھے زیارت حسین نصیب ہو، اب ابھی گئے نہیں لیکن اس کا ثواب تو ملا. اسلام نیت کا اجر دیتا، 50% تو ثواب مل گیا، جانا ہوا یا نہیں ہوا وہ بات کی بات ہے، اگر چلے گئے تو بہت بڑی بات ہے، اگر نہیں گئے تو کم از کم آپ کے اکاؤنٹ میں گڈ ڈیڈس میں تو آ گئے، آپ کے بیڈ ڈیڈس کم ہوئے، گڈ ڈیڈس میں بڑھ گئے، آپ کا اکاؤنٹ تو بڑھ گیا. اتنی خوبصورت دعا کہ دنیا میں اگر زیارت امام حسین کسی کو نصیب ہو جائے، ہو سکتا آپ کو کربلا کے علاوہ مولا حسین کی زیارت نصیب ہو جائے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ تو اس کے لیے اتنی ضروری ہے، لیکن عام طور پہ ہم کرتے نہیں. تو ہمارے پاس 1000 دعائیں ہیں، وہ ساری دعاؤں کو قبول کرانے کے لیے یہ دعا کرو. پہلے اپنی زبان پہ یہ نکالو کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین، کہ مولا حسین آپ کی زیارت نصیب ہو. یہاں پہ یہ شرط نہیں ہے کہ کربلا کی ہو، یہ آپ غور کر رہے ہیں اس میں، یہ شرط نہیں ہے. آپ یہ نہیں بول رہے کہ مجھے کربلا کی زیارت نصیب ہو، بلکہ آپ کیا بول رہے ہیں، فی الدنیا میں، دنیا میں مجھے زیارت امام حسین ہو. हो सकता चांसेस अगर हम इतने पायस बन जाएं तो मौला हुसैन खुद आ जाए हमारे पास। और ये इसमें ताज्जुब नहीं, आपको हजार मरतबा इमाम अली अलैहिस्सलाम की लोगों को ज्यारत होती, जमाने के इमाम की ज्यारत होती, मौला अब्बास कुछ ना कुछ ख्वाब में तो होगी। और एक चीज याद रखो, मौला हुसैन की ज्यारत बहुत कम होती, मौला हुसैन बहुत कम ऐसा सामने आते, और जब आए जिस जगह पे आए उस जगह का सारा अजाब उठ गया। आज एक वाकया पढ़ूंगा कि मौला इमाम तो रोज आते, मौला अली तो हर की लहर में आते, ये हमारा ईमान है कि फर्स्ट नाइट मेरा मौला आता है। गरीब इमाम की जो जाहिर बनेगा वो गरीब इमाम उसके पास आएगा, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए आप बहुत कम सुनेंगे वाकया कि मौला हुसैन अब आए। और जितने वाकया सुना इमाम हुसैन के, जहां जिस कब्रिस्तान में गए मौला, पूरे कब्रिस्तान का अजाब उठा। इंशाल्लाह आगे चल के सुनना कि क्या इसमें कमाल है, कमाल है मौला हुसैन की ज्यारत के लिए। अगर ज्यारत नसीब हो जाए तो इससे बड़ा ऑनर कोई नहीं हमको। दुनिया की सारी चीजें एक तरफ, ज्यारत इमाम हुसैन एक तरफ, लेकिन ज्यारत इमाम हुसैन किसको होती वो सबसे पहले क्वेश्चन बात है। तो कौन ज्यारत कर सकता मासूम की, हर आदमी नहीं कर सकता। इसलिए कि मेरे गुनाह इतने, मेरी आंखों से मैंने इतने गुनाह किए, मैंने अपनी जबान से इतने गुनाह किए कि ज्यारत हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले अपने आंख को बचाओ, इमाम हुसैन की ज्यारत करना है, विच इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। हम चाहते भी नहीं कि मैं अपने आंख के गुनाह से बचूं। आप इतना प्रॉब्लम क्या है मालूम, हमारे जहनों में यह है कि हमको कुछ नहीं होने वाला है, यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम। कोई इंसान, आप इंसाफ से बोलो, रात में जब आप बिस्तर पर जाते आप कभी सोचते यार मैंने इतने गुनाह किए? कभी मुझे याद आता, मुझे याद क्या आ रहा कि मैंने कितनी नेकी की है, मैंने किसको डोनेशन दिया, मैंने किसकी मदद की है, मैंने कितने अच्छे काम किए, ये याद आ रहा। याद क्या, ये याद आ रहा, जबकि हुक्म क्या है, जितनी तुमने नेकियां की उसको भूलते जाओ। याद क्या रखो, अपने गुनाह को याद रखो। गुनाह याद आएगा तो तुम माफी भी मांगोगे, गुनाह याद आएगा तो तुम बोलोगे अल्लाह सॉरी, फॉरगिव मी, जो अफजल तरीन इबादत है। कितनी मरतबा सुबह से शाम तक हमारी जबान पे फॉरगिवनेस की दुआ आती, कितनी दफा थी, कितनी दफा नमाज के बाद मैं बोलता कि अल्लाह प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं सबसे बड़ा गुनाहगार हूं। कभी बोलते हैं ये सब? ये बोलते हैं हमारी जबान में आता है, हमारा ईगो ऐसा नीचे गिरेगा अगर जब तुम ये बोलोगे ना अल्लाह तेरी मर्जी। ये जुमले मेरे गौर से सुनो, तीसरी मजलिस गुलिस्तान हिंद, पहला जुमला ये बोलना कि अल्लाह तेरी मखलूक में सबसे बड़ा गुनाहगार मैं हूं, सबसे गुण। अपने गुनाह को एक्सेप्ट करो, ये जितना अल्लाह की बारगाह में नीचे होके जाओगे ना उतना वो बुलंद करेगा। पहले अपने, इसलिए कि अच्छा ये मैं नहीं बोल रहा, हर इमाम यही बोल रहा, दुआ अरफा में आपने ये कहा, मौला हुसैन बोल रहे। अब सोचो इमाम हुसैन बोल रहे कि अल्लाह तेरा वो बंदा तेरी बारगाह में जिसके दामन में अमल नहीं। इमाम अली, मौला आपको हम सबको मौकूफे की ज़ियारत नसीब कर,
आमीन
बोलने से होता।
नारे हैदरी,
मौला आबाद रखे, मौला आबाद रखे, मौला अल्लाह हमको मौला की नजफ अशरफ की ज़ियारत नसीब। आप जाते हैं मौला के पास मस्जिद, गौर से सुनना, मस्जिद कूफा जाते हैं, मस्जिद कूफा से पहले मौला के घर की ज़ियारत करते हैं। हर जात जब मस्जिद कूफा में एंटर होता, हमारा इंटेंशन क्या रहता, सीधा मैं वो जगह पे जाऊं जहां मेरा मौला नमाज पढ़ाता था, जहां 19 रमजान को मौला को जरूरत लगी थी। हम जाते, दुआ करते, रोते, पुरसा देते। जब आप मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, वापस आते, वापस आके राइट साइड पे मुड़ते, मस्जिद में जाके सीधा जो जाहिर निकलता वहां से राइट पे मुड़ता। राइट पे क्यों मुड़ते, सामने जनाब मुस्लिम इब्ने अखिल इब्ने अबू तालिब है, बिल्कुल सामने। सबका इंटेंशन यह रहता है जनाब मुस्लिम के पास जाना, बहुत बड़ी ज्यारत है, बहुत बड़ी ज्यारत है जनाब मुस्लिम, इतनी बड़ी ज्यारत है कि उनके लिए पूरा एक अशरा चाहिए, इतने उनके वाकयात और इतना उनके जमाने के जो हालात है, और वो जो जनाब मुस्लिम का जो कंट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स इस्लाम, टूवर्ड्स इस्लाम। तो जैसी आप मेरी तरफ, जैसी जनाब मुस्लिम के सामने जनाब मुस्लिम का रोजा है, जनाब मुस्लिम के रोजे से 10 कदम पहले, 10 स्टेप्स पहले राइट साइड पे एक मीनारा है, एक मेहराब बना हुआ है राइट पे। इसलिए कि लेफ्ट पे तो खुला ओपन स्पेस है, पूरा मस्जिद का ओपन स्पेस है, राइट साइड पे एक छोटा सा वो है। वो क्या है, वहां पे ये बोला जाता है कि ये वो जगह है कि जहां मेरा मौला बैठ के मुनाजात करता है। ये मैं नहीं बोल रहा, जाके देखो, मैं जो बोल रहा आप जाके देखो कौन मुनाजात कर रहा। व्हाट इज मुनाजात? मुनाजात यानी अल्लाह की बारगाह में फरियाद करना, अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगना, अल्लाह की बारगाह में इबादत करना। ये मुनाजात आपको हर जगह मिलेगी। सैयद ज़ीशान हैदर जवानी की जो रमजान की किताब है मरहूम की, उसमें उसका तर्जुमा है, मफातिहुल जिना में मिलती है। कभी जिंदगी में पढ़िए मुनाजात। अफसोस है यार, अफसोस है, वेरी सैड। कितने दफा हमने रमजान में मुनाजात पढ़ी? वो मुनाजात में क्या है? खाली अगर कोई इंसान वो मुनाजात पढ़े मौला अली की जबान के जुमले, किसी और के जुमले नहीं, छोटी सी मुनाजात है मौला जी। वहां बताया जाता है कि ये जो स्पॉट है ये वही जगह है जहां अली बैठ के मुनाजात करता था। किससे कर रहे? मौला उसकी बारगाह में। इमाम अली को जरूरत है मुनाजात की? हमको जरूरत है मुनाजात की। मुनाजात की जरूरत हमको है, इमाम अली को नहीं है। इमाम अली बेनियाजों का बेनियाज है। क्या बोल रहा है? अली कायनात का मालिक है। इमाम अली की मोहब्बत ईमान है, बुक्स कुफ्र निफाक है। अली अफजल, अफजल तरीन अल्लाह का बंदा। अली से बड़ा कोई नहीं है। खाली आप इंसाफ से बोलो, इंसाफ से बोलो, मेरे मौला का नाम अगर मेरे कफन पे आ जाए मेरी बख्शिश हो जाएगी? हमारा अकीदा है ना कि मेरे मौला का नाम अगर आ जाए तो तुम्हारी बख्शिश हो जाएगी। इमाम अली बैठ के, मेरी ख्वाहिश है आपसे, अगर नहीं है तुम्हारे पास मुनाजात, लेट मी नो, आई विल सेंड इट टू यू। अजीब, तुम वो मुनाजात अगर डेली पढ़ोगे, प्लीज गौर से सुन, मैं ऊपर कई प्रेशर है, कई चीजों की ख्वाहिशात है, ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो। अगर मुनाजात तुम डेली पढ़ो 40 दिन, इमाम हार्डली 5 मिनट्स की मुनाजात है, कुछ भी नहीं है उसमें, सिर्फ इमाम अली बता रहे कि मैं क्या हूं और तू क्या है। क्या बोल रहा है यार? अली सीधे बता रहे कि मैं कौन और तू कौन। ये जो मैंने अभी एक जुमला बोला ना कि रोज हर नमाज के बाद ये बोलो, अल्लाह तेरी मखलूक में, तेरे क्रिएशन में सबसे बड़ा गुनाहगार मैं हूं, ये एक्सेप्टेंस तुम्हारे आगे लेके जाएगा। अगर तुम्हारे पास एक्सेप्टेंस ही नहीं है, हमारे पास क्या है? नमाज हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई। नमाज तो पढ़ ली, व्हाट डू यू मीन नमाज पढ़ लिया? नमाज पढ़ने के बाद ये एहसास हुआ कि ये मेरी नमाज कबूल हुई या नहीं हुई? कितनी अफसोस की बात है। कभी मैं इंसाफ से देखे, मैं ये नहीं बोल रहा किसी की, हर आदमी, कई लोग इसमें होंगे कि जो दुआ मांगते हैं, जो इस्तगफार करते हैं, जो मौला सोचते हैं, मैं जनरल बात कर रहा, गुलिस्तान के मेंबर से जनरल बात कर रहा। कभी मैं नमाज पढ़ के मुझे फील होता है, यहां पे पिंच होता यार, पता नहीं मेरी नमाज एक्सेप्ट हुई या नहीं। हमने नमाज पढ़ी तो हमने, हम ये समझे कि जो मेरा हक था वो मैंने अदा कर लिया। इंसान कभी अल्लाह का हक अदा नहीं कर सकता। अरे मां बाप का नहीं कर सकता तो अल्लाह का क्या करेगा? मां बाप का नहीं कर सकते तुम अल्लाह का क्या हक अदा करोगे? अगर 100 रकत नमाज पढ़े तो बहुत बड़ी बात होगी मेरी। 51 रकत नमाज हर मोमिन को पढ़ना चाहिए दिन भर, 51 रकत, वो उसकी डिटेल में मैं नहीं जाता, बाद में पूछ लेना मेरे से। तो सबसे बड़ी चीज क्या है? वो मुनाजात। मेरी ख्वाहिश है आपसे, पूरा 20 वक्त कई चैनल्स में मेरी मजलिस जा रही, जो भी बैठ के सुन रहा मेरी मजलिस, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा कि मुनाजात पढ़ो आज की रात से, 5 मिनट स्पेंड करो, उसके बाद देखो कि तुम्हारी जिंदगी के हालात बदलते कैसे, उसके बाद देखो कि तुम्हारी दुआएं कबूल कैसे होती, उसके बाद देखो कि तुम्हारी हाजात, तुम्हारी परेशानियां, आने वाली बला, इसलिए कि वो इमाम अली के जुमले, किसी और के जुमले नहीं, मौला अली बोल रहे कि तू मालिक है, मैं तेरी मखलूक हूं, तू देने वाला है, मैं लेने वाला हूं। अजीब जुमला है मेरे मौला का, मैं लेने वाला हूं, कभी मैं सोचता कि मैं लेने वाला हूं। उसके बाद बोल रहे कि तू अता करने वाला है, मैं भीख मांगने वाला हूं। कौन बोल रहा यार, ये कौन बोल रहा? ये तो सोचो कि जिसको कोई चीज की जरूरत, जिसकी ठोकर में कायनात हो, ठोकर में कायनात है, जो खाली एक इशारा करते। इमाम अली कौन है पता है? मौला अली के बारे में यह है कि मस्जिद कूफा में बैठे हुए थे सब असाब बैठे, मौला ने कहा मैं चाहूं तो ये दीवार सोने की बन जाए, मैं चाहूं तो ये दीवार सोने की बना सकता। वो दीवार ऐसा सोने की बनने लगी। अली ने कहा कि मैंने तुझे हुक्म नहीं दिया। आप समझे मेरी बात? मौला ने कहा मैंने हुक्म नहीं दिया तुझे, आप ऐसी हालत में चले। इमाम अली उस पर्सनैलिटी का नाम है कि कोई मर भी जाए ना, सलमान का वाकया नहीं है, वाकया नहीं पढ़, सलमान को डिक्लेयर डेड बॉडी थी, गुस्ल हो गया था, कफन हो गया था, मौला आए तो क्या हुआ? सलमान की बॉडी ऐसे खड़े होने लगी, अस्सलाम अलैका या अमीर अल मोमिनीन। मौला ने पलट के क्या कहा? سلمان تو اصلی اپنی اصلی حالت میں چلے جا. یہ ہے مولا, اور وہ کیسے مانگ رہے؟ یا جی میں فقیر ہوں, علی نے کہا میں فقیر ہوں پروردگار, میں تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا. اس کے بعد کہا اگر تو نہیں دے گا تو مجھے کون عطا کرے گا؟ خالی جملے سنو یار, اتنا امام کر رہا ہے اور ہمارے حالات, ہماری زندگی کے کیا حالات. پلیز ٹیلیفون کو آپ پٹ آف کر دیں, سر بات پڑے محمد والے تو یہ دعا مانگو. پلیز ریکویسٹ کر رہا کہ بیٹھ کے غفلتوں سے باہر نکلنا. یہ اشیاء کا مطلب ہی ہے. یہ دعا سے میں نے مجلس نے شروع اس لیے کی کہ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین, اگر زیارت الحسین مل جائے. لیکن وہی بات ہے, کنڈیشن ہے, زیارت اسی کی زیارت ایکسپٹ ہوگی. دیکھیں میں جا رہا ہوں مولا حسین کی زیارت, اللہ ہم سب کو اربعین کی زیارت نصیب ہو. اس سال اربعین کے لیے مولا راستے کھول دے, یہ کووڈ 19 سے سب کو بچا لو, اور اربعین حسین کے لیے سب جائیں انشاءاللہ. زیارت اربعین کے لیے بابا سے وزن سروا تھوڑا. سب جا رہے اربعین کی زیارت کے لیے. کل میں نے بتایا تھا کہ واک کیا, واک اس پہ نہیں بول رہا. اب کیا کرنا, جبھی بھی واک پہ جانا انشاءاللہ اس سال آپ جا رہے ہیں. واک پہ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے کیا کرنا معلوم, فرسٹ اسٹیپ جو ہے نجف اشرف سے آپ شروع کریں. سب سے پہلے ٹیلی فون کو پٹ آف کرو. ٹیلی فون رہے گا پھر تمہارے گناہ چلتے رہیں گے. مجلسوں میں بھی آئے تو ٹیلی فون کو پٹ آف کر کے بیٹھو. ایک گھنٹہ ہی ہے نا, $1 million لوز نہیں کر رہے تم. اگر تمہارا ٹیلی فون پٹ آف ہو جائے تو کوئی اتنی بڑی ڈیل نہیں ہے تمہارے ہاتھ میں کہ وہ اتنا بڑا نقصان ہو جائے گا. نقصان یہ ہوگا کہ اگر تم ٹیلی فون پٹ آف کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا کہ کم از کم کوئی ایک اچھی بات سن کے اٹھ جائے, تو وہ سب سے بڑا زندگی کا فائدہ ہے. دوسری چیز, جیسی زیارت کے اربعین کے لیے جاؤ, جب آپ ریسٹ کے لیے جا رہے, کوئی ایک پول کے پاس رک رہے یا کہیں جا رہے رک رہے, وہاں پہ بات دو گھنٹے کے بعد بات کر لو. ٹیلی فون رہے گا پھر انڈیا سے شروع ہو جائیں گے, پاکستان سے شروع ہو جائیں گے. اس کا کیا ہوا, اس کا کیا ہوا, اس کا کیا, پورا فون پہ ڈیل کرتے ہوئے, پورا بزنس ڈیل کرتے ہوئے واک کر رہے ہیں. واٹ از دا یوز, کیا فائدہ وہ واک کی؟ مطلب آپ کس کے لیے واک کر رہے ہیں؟ مولا حسین کے لیے واک کر رہے ہیں یا اپنا بزنس کر رہے ہیں؟ یہ سب سے پہلے چیز کو آف کرو. وہ دیکھیں ایمرجنسی از ڈفرینٹ, آپ کو کسی سے بات کرنا ہے, کوئی آگے چلے گیا, کوئی مس ہو گیا, اس سے ڈفرینٹ نہیں, لیکن ہر آدمی کے لیے تھوڑی ہے. پہلی چیز ٹیلی فون واک کرو. جب واک ٹو پیراڈائز, اس کا نام ہی واک ٹو پیراڈائز, جیسی آپ نے اسٹارٹ کرو اس کو پٹ آف کرو. دوسری چیز, جتنے تمہارے ساتھ جا رہے گروپ ہے پورا, نکلنے سے پہلے سب کو بتا دو کہ ہم کو بات کرنا نہیں ہے, ہم کو صرف سلوات پڑھنا ہے. We are not going to talk, we are not going to speak anything. باتیں کرنا ہے تو ہوٹل میں بیٹھ کے بات کرو. اپنی زیارت کو اسپائل مت کرو. اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین, خراب مت کرو زیارت کو. اس لیے کہ اگر وہاں زیارت امام حسین ہماری لاکھ بار خدا نہ خواستہ, لاکھ بار خدا نہ خواستہ ایکسپٹ نہیں ہوئی. آپ اتنی تین دن کی واک کر رہے, ہزاروں روپے خرچ کر کے یہاں سے کربلا جا رہے, اور اگر نہیں ہوئی تو واٹ از یوز, کیا ہوا پھر ہمارا فائدہ کیا؟ مولانا حسین بولے کہ تو نے یہ کیا, تو غیبتیں کرتے ہوئے آ رہا تھا, آپ انصاف سے میں کسی کی بات کرتے ہوئے جا رہا, کسی کے بارے میں سوچتے ہوئے جا رہا, یو تھنک کہ میری زیارت ایکسپٹ ہوگی؟ زیارت ایسی ہو جیسے جابر نے کی تھی, زیارت ایسی ہو جیسے حبیب کو مولا حسین نے لکھ کے بولا تھا کہ آ جا میرے پاس, وہ زیارت ہے. میں یہ نہیں بول رہا, ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ, میرا مطلب یہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ کسی کی زیارت خراب ہو رہی. نو, مجھے آئی ڈونٹ ہیو اینی رائٹ ٹو سے دس, بٹ آئی ایم جسٹ ٹیلنگ. میں یوتھ کو بول رہا, بڑوں کو نہیں بول رہا, میں صرف یوتھ کو بول رہا کہ جب تم اتنی ماشاء اللہ زیارت کو جاتے ہو, اتنی تم خدمت کرتے ہو, اور تو سب سے پہلے ٹیلی فون پٹاؤ. دوسری چیز, پہلے سے ڈیسائیڈ کر کے جانا کہ مجھے صرف صلوات پڑھنا ہے. صلوات کا جو اجر تم کو زیارت امام حسین میں ملے گا تم اس کا تصور نہیں کر سکتے. صلوات ایک ایسی دعا ہے, صلوات ایک ایسی عبادت ہے. پھر بول رہا, صلوات ایک ایسی عبادت ہے. میں یہاں تک بول رہا کہ اگر انسان پریشانیوں میں گر جائے, اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا, صرف اندھیرا سمجھ میں آیا, صرف صلوات پڑھو, کچھ نہیں کرو عبادت, صرف صلوات پڑھتے رہو, 1000 مرتبہ صلوات پڑھو. کیوں؟ صلوات ایک ایسی عبادت ہے جس میں اللہ کا رسول کو سب سے زیادہ اگر پسند ہے وہ صلوات ہے. اتنی بڑی بات بولا, ذمہ سے بول کیا بول کیا پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد واجل پر
اللهم صل علی محمد و آل محمد
صلوات کی بات آئی تو سن اللہ کا رسول معراج پہ گیا فورتھ سکائی کے اوپر چوتھے آسمان کے اوپر کئی لوگوں سے ملاقات ہوئی نبی عیسیٰ سے ملاقات ہوئی ملک الموت سے ملاقات ہوئی بعض روایتوں میں نبی ادریس سے ملاقات ہوئی ہر آسمان پہ اللہ کا رسول عباد نمازیں پڑھاتا ہو جا رہا تھا چوتھے آسمان پہ جب پہنچے تو ایک ملک دکھا اللہ کے رسول عجیب اللہ کی مخلوق اس کا کریشن اللہ کا کریشن ہے خادر مطلق عجیب کریشن کہ ایک ملک ہے پورا اب ملک کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے کہ اینجل ہوتا کیسا یہ اللہ کی ایک عجیب مخلوق ہے نفیس مخلوق ہماری طرح نہیں ہو ہیوج پرسنالٹی جبرائیل کے بارے میں یہ ہے کہ ان کا ایک ونگ مغرب پہ ہے تو ایک ونگ مشرق آپ سمجھ رہے ہیں کتنی بڑی چیز ہے یعنی ایسٹ اینڈ ویسٹ ایسا ایک ونگ سب کو ونگس ہے ان کو جب وہ فلائی کرتے تو اتنی سپیڈ کہ آج تک کوئی جبرائیل کی سپیڈ نہیں بتا سکا کہ اللہ کا حکم لے کے نیچے کتنی دیر میں آتے تھے فریکشن آف سیکنڈ میں فریکشن آف سیکنڈ میں جبرائیل ٹریول کرتے تو وہ ملک وہ جو اینجل تھا نا عجیب اللہ کا کریشن آپ سوچیں تو ڈر لگے کہ ہیوج اللہ غور سے ایک فرشتہ اس کے ہاتھ پہ 1000 ہاتھ تھاؤزینڈ ہینڈس تھاؤزینڈ ہینڈس میں تھاؤزینڈ فنگرس ہیں میرے پانچ ہیں نا ہزار ہزار فنگرس ہیں ہر ہاتھ کے عجیب اللہ کا کریشن ہے اللہ کے رسول رکے اسے سلام کیا سردار ملک سردار انبیاء شافی روز محشر ہے اللہ کی افضل ترین بندہ ہے اللہ کے رسول کا تو سب غلام ہے تو اللہ کے رسول رکے وہ فرشتے نے اللہ کے سرکار تو جانتے تھے ہمارے لیے روایت آئی اللہ کے رسول نے اسے پوچھا بھائی تیرا کام کیا ہے بھائی ہر فرشتے کی ڈیوٹی ہے تم کیا کرتے اب سن اس نے کہا یا رسول اللہ میرا کام یہ ہے کہ آسمان سے جو بارش ہوتی رحمت کی جو ڈراپس آف واٹر پلیز غور سے سنو ڈراپس آف واٹر جو زمین پہ گرتے میں ایک ایک ڈراپ کا میرے پاس کیلکولیشن ہے رحمت جو آتی اوپر سے ایک ایک ڈراپ دیکھیں آج سائنس کیا بولتی کتنے انچ بارش ہوئی ڈراپس نہیں بولتی نیوز پیپرز میں کیا تھا آج بارش ہوئی بامبے میں بہت زبردست شاور ہیوی شاور وہ بولے گا 3 inch, 4 inch, 5 inch, 6 inch, 7 inch, 20 inch بارش ڈراپس کوئی نہیں بولے گا آج ایون سائنس نہیں بتا سکتی کہ آسمان سے کتنے ڈراپ زمین پہ گرے اس کا کیلکولیشن ایون کسی کے پاس نہیں اس نے کیا کہا اس نے یہ نہیں کہا کہ کتنے انچ بارش پلیز یار غور سے سنو اس نے کہا یا رسول اللہ اللہ کی جو رحمت آسمان سے آتی بارش کی شکل میں شاورز کی شکل میں تو ایک ایک ڈراپ کا میرے پاس کیلکولیشن ہے کب سے جب سے زمین بنی نبی آدم کے زمانے سے چلو میں لیتا ہوں اللہ کے رسول تک آلموسٹ 12,000-14,000 ایئرس کا جتنی جہاں بارش ہوتی ہے جو بادل برستے ہیں شاورز نیچے آتے ہیں اس کا ایک ایک ڈراپ میرے پاس کیلکولیشن اللہ کی رحمت کا میرا کمپیوٹر کبھی وائرس نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا میرا کمپیوٹر پہ ہر چیز فیڈ ہے یہ سنا تو اللہ کے رسول نے کہا تیرے پاس رحمت کی پورا کیلکولیشن ہے اس نے کہا ہاں پھر سرکار نے کہا کبھی کوئی اللہ کی کوئی اور کوئی ایسی رحمت ہے کہ جس کا کیلکولیشن تیرے پاس نہیں ہے بارش کے علاوہ بھی کوئی رحمت اوپر سے آتی ہے ہنسنے لگا ہنس کے کہا کہ ہاں ایک رحمت آتی ہے اوپر سے ایک رحمت آتی ہے جب آپ کی امت آپ کی اور آپ کی اولاد پہ صلوات پڑھتے ہیں اب سنو اصل بات ایک رحمت اور آتی ہے جب آپ کی امت آپ کے اور آپ کے آل پہ درود بھیجتے ہیں کہتا ہے وہ رحمت اتنی تیز آتی کہ اس کا کیلکولیشن میرے پاس نہیں وہ فرشتہ جو پورا کیلکولیٹ کر کے رکھا ہوا حساب ہے اس کے بعد یہ رحمت جو اللہ کی رحمت آ رہی صرف کیا کر رہے ہیں آپ ایک سلام اللہم صلی علی محمد والے تو اس تو اگر آپ پریشان ہیں نا پریشانیوں میں نا پریشان ہو نا سلوات پڑھو سے صرف سلوات پڑھتے رہو تو رحمت تو آ رہی جب رحمت آئے گی تو تمہاری مصیبت دور ہوگی اگر رحمت کو تم کو لینا ہے اللہ کی رحمت کو اصل چیز بلیسنگ ہے جو ہماری پریشانیاں ڈے ٹو ڈے پرابلمس ہیں نا یہ آبسٹیکل یہ آبسٹیکل یہ آبسٹیکل یہ آبسٹیکل جو چل رہا نا اس کو دور کرنے کا کیا طریقہ صرف سلوات پڑھو اور پھر ایک چیز دیتا سور میں کل میں نے بولا تھا اس کا اس لیے بول دینا بیچ میں بات آ گئی. قرآن کا سورہ زاریات, زاریات سورۃ الزاریات, شیخ محمد اس روایت کو لکھ دے, اتنا سمپل عمل دے رہا رزق کے لیے, کر کے دیکھنا. اس کا پوری ایک فہرست ہے کہ کس طرح ہوتا ہے. فجر کی نماز کے بعد جب بی بی کی تسبیح پڑھ دینا تو تسبیح پڑھے وقت اپنا پہلو نہیں بدلنا. جس اینگل میں آپ بیٹھے ہوئے, کرسی پہ بیٹھ کے پڑھے تو کرسی پہ, جو آپ کا پہلو نہیں بدلنا ہو تو آپ سیدھا نہیں بیٹھ جانا. ایسا جیسا نماز ختم کرے بی بی کی تسبیح پڑھے 11 مرتبہ سلوات پڑھ کے سورہ زاریات کی آیت نمبر 58 اللہم رائنی رازق رزق وہاں سے شروع ہوتی. آیت نمبر 58 سورہ زاریات, یہ 27 مرتبہ ایک آیت پڑھو. پلیز غور سے سنو, 11 سلوات, 27 ٹائمس یہ آیت, پھر 11 ٹائمس سلوات, 11 سلوات اور بیچ میں 27 مرتبہ یہ آیت سورہ زاریات, سورہ نمبر 58 سوری آیت نمبر 58 یہ 40 دن تک کرو. یہاں پہ اور یہ پڑھ یہ کر کے نوے امام امام محمد تقی جواد علیہ السلام کو حیا کرو. نوے امام کو ہدیہ کرو. کیوں کرو نوے امام کو ہدیہ؟ رزق کے لیے. نوے امام اللہ کا رسول بول رہا, عابد اللہ بھی نہیں بول, اللہ کے رسول بولتے ہیں کہ اگر تم کو حلال رزق میں برکت چاہیے تو میرے نوے وارث کا واسطہ دو. اللہ کے رسول اس وقت بول رہے اپنے زمانے کہ اگر تم کو حلال رزق میں برکت چاہتے, تم اپنی پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے, تم اپنے رزق میں چاہتے, مثال کے طور پہ تمہارے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے, تم چاہتے 10 لاکھ کی برکت, تو تم جو ہے یہ میرے نوے وارث کا واسطہ دو. اس لیے کہ اس امام کا نام ہے محمد, تقی آپ کا لقب ہے, جواد بھی آپ کا ٹائٹل, جوادین بولتے ہیں جب آپ قاسم جائے. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے میرے محمد. نوے امام کا لقب ہے جواد. جواد کے معنی بے مانگے عطا کرے. جو صفت اللہ کی ہے وہی صفت یہ امام کی ہے. رزق کے لیے بہترین عمل میں آپ کو دیا ہوں, آپ ٹرائی کرو کل کی فجر کی نماز. ویری سمپل, ہارڈلی ٹیکس 5 to 6 منٹ, ایک آیت پڑھنا ہے سورہ زاریات آیت نمبر 58 پر. اچھا یہ صرف رزق کے لیے نہیں, ایون ہسبینڈ اینڈ وائف میں اگر محبت چاہتے, ایک ہیپی میرڈ لائف چاہتے, اس کے لیے بھی بہت اچھا ہے, رزق کے لیے بہت اچھا. تیسری چیز, اگر سٹریس کسی کو ہے, سٹریس, اس کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہے. اب یہ آیت پڑھو, کتنا سمپل ہے, 11 سلوات, 27 ٹائمس یہ آیت اور 11 سلوات, اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کے نوے امام کو گفٹ کرنا, نوے امام کو ہدیہ کرنا. ہدیہ کر کے بولنا مولا, یہ نہیں بولنا کہ بمبے کا پورا رزق میرے پاس آ جائے, یہ بولو اللہ سب کے رزق کھول دے اور آج کی صبح میرا رزق کھول دے. آپ یقین کرو اس کے بارے میں یہ کہ اگر تمہارا رزق کے آگے پہاڑ ہے تمہارے سامنے, تم کو ایسا لگ رہا کہ میرے لیے کوئی دروازہ کھلنے والا ہی نہیں, میں اب کیا کروں, خودکشی کر لوں, سوسائڈ کر لوں, حرام ہے, وہ کبھی نہیں کرنا. سوسائڈ کا مطلب تم اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے تم, یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی سے. اس لیے اتنا میں بھی اس میں بھی تھک گیا, میں پریشان ہے مولانا, اب تو میرے کو کچھ نہیں کر, کوئی راستہ نہیں نکلا سوائے سوسائڈ. واٹ یو مین سوائے سوسائڈ؟ میں نے کہا یار تم 40 سال اپنے گزارے لائف کے, اب پورا حرام میں جاؤ گے, حرام ہو جائیں گے, وہ موت ہی حرام ہے. اس کا مطلب تم کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے. اگر تم نے مثال کے طور پہ سوسائڈ کیا, مثال دے رہا اور اللہ پہ بھروسہ نہیں کیا, تو وہاں پہ مرنے کے بعد کون, کس پہ بھروسہ ہے تمہارے, کیا بننے کے بعد راحت ہے؟ دنیا کی چھوڑی سی پریشانی کو چھوڑ کر تم, اور لڑکیاں اپنی فیملی ممبر سے, ہسبینڈ سے, اپنی مدر ان لا سے تنگ آ کے بولے کہ اب ہماری زندگی میں کچھ ہے نہیں, میری گھر کی زندگی پوری حرام ہوگی, اب میں بہتر ہے کہ سوسائڈ کروں. ینگ لڑکیاں, میں نے کہا تم یہ کر کے تم کیا چاہ رہے, کہ تم یہ سمجھے کہ مرنے کے بعد تم کو راحت ہے, بلیسنگ ہے, رحمت ہے, سکون ہے, مرنے کے بعد اور عذاب ہے, اتنا بڑا عذاب ہے کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے. اس لیے کہ تم دنیا, تم اللہ پہ بھروسہ نہیں کیا, تم نے امام پہ بھروسہ نہیں کیا, تم اس دنیا کو چھوڑ کے کہاں جا رہے, ویئر آر یو گوئنگ؟ تم سمجھ رہے وہاں پہ تم کو بڑا کمفرٹ ہے, وہاں پہ تو اور مار پڑے گی. اس لیے کہ وہاں پہ اگر اللہ بولتے جا, تو جس کے بھروسے پہ مرا تھا اسی کے پاس جا, कोई जवाब है वहां पर? कभी नहीं करना भी, सोचना भी नहीं। परेशानी आती है, परेशानी जाती भी है, और जाती है तो आप दुआ कर। अस्तगफार बेहतरीन अमल। ये मैं नहीं बोल रहा, मेरा मौला हुसैन बोल रहा, मेरा मौला अली बोल रहे कि जब तुम परेशानियों में घिरो अस्तगफार करो। ये नहीं कि जब पैसा आ जाए और अस्तगफार कैसे करो, अपने वो गुनाहों को याद करो ये तुमने किया। ये मत बोलो यार आई डिडंट डू एनीथिंग, ये तो जबान पे आना ही नहीं कि आई डिडंट डू एनीथिंग। अगर ये सोच लिया तो मौला हुसैन की ज्यारत करके फायदा क्या, ज्यारत में जाकर मिल रहा क्या? ये कभी मत बोलो आई डिडंट डू एनीथिंग। ये बोलो कि अल्लाह सबसे बड़ा गुनाह, इसलिए कि ये तरीका है मौला हुसैन का। दुआए रोजे अरफा में या इमाम अली की सारी दुआ में जिस मुनाजात का मैंने जिक्र किया, उसमें सबसे चीज मौला एक ही चीज मांग रहे। अगर आपको ये प्लीज गौर से सुनना, अगर आपको ये पता चल जाए कि ये कोई किसकी दुआ है, इफ यू डोंट नो एनीथिंग, नाम भी नहीं मालूम, तुम दुआ पढ़ो, तुम बोलेंगे यार कोई ऐसे ऑर्डिनरी आदमी, कोई बड़ा गुनाहगार की दुआ है। क्या बोल रहा यार, क्या बोल रहा? दुआए कुमे लगा मालूम नहीं तुमको कि मैं दुआए कुमे पढ़ो, एक ले मैन को दो और बोले उफ कितना बड़ा गुनाहगार, ये कैसे मांग रहा अल्लाह से? इमाम हुसैन की रोजे अरफा की दुआ, अगर आपको पता नहीं कि मौला हुसैन की दुआ है, आपके सामने आए तो बोलेंगे यार कैसा मांग रहा। देखो फिर बाद में अगर कोई बोले कि इमाम हुसैन बोल रहे, यकीन नहीं आता। आज जुमेरात को कुमेल पढ़ी है ना, कुमेल पढ़ के क्या क्या मिला, क्या फायदा, क्या चेंज किया? कोई दुआ में कोई फायदा हुआ, कोई मेरी लाइफ में कोई चेंज आया, कोई इमाम अली का कोई एक जुमला मेरी लाइफ में मैंने इंप्लीमेंट किया, क्या मेरी लाइफ में कुछ मैं सोचा, मेरी थिंकिंग बदली कि यार इमाम अली ऐसा बोल रहे? अब सोचो मैं क्या बोल रहा, मैं प्लीज गौर से सुना। ये नहीं कि बैठे हुए एक घंटा गुजारना है गुलिस्तान की मजलिस सुनना, वो फायदा नहीं है। मेरा एक जुमला गौर से, ये बातें आपको कोई नहीं बोलेगा, इस तरह कोई नहीं बोलेगा। शुक्र अदा करो कि कोई बोलने वाला है तुम्हारे पास। सर बात पढ़ ले मोहम्मद
मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात,
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरज।
एक और सलवात पढ़ लें बाबू,
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरज।
ये जो दो मिनट गुजरे वो मेरे नहीं
बर मोहम्मद वाले मोहम्मद आवाज बुलंद सलावत,
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद।
40 मिनट की मजलिस हो गई, अभी कुछ स्टार्ट ही नहीं करा, 40 मिनट गुजरे। मौला आवाज रखे यार गुलिस्तान वाले,
आमीन।
गुलिस्तान की मजलिसों की बरकत ये और टाइमिंग्स, वहां पे भी यही हशर हो रहा था, यहाँ पे भी यही हशर हो रहा। अल्लाह ये वीरानी फैमिली को अच्छा रखे, जिस घर से बैठ के मैं मजलिस पढ़ा, और मजलिस करवाने वालों को जो इसमें इंतजामिया है, अल्लाह उनको भी सलामत रखे। बाबा मैं सबके लिए दुआ करा, एक दिन ठंडी ठंडी आमीन बोले तो कुछ नहीं मिला। एक सलवात और पढ़ने बाबा से बलन, एक मजलिस का ऐलान, तीन मजलिसों का ऐलान करना है, इसलिए कि मसला ये है कि मजलिस के फौरन बाद कुछ चैनल्स जो है वो अपना बंद कर देते, तो आम तौर पे पूरा ऐलान नहीं होता। कल से मेरी तीन मजलिसें हैं, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, फ्रॉम टुमारो फ्राइडे सैटरडे एंड संडे मॉर्निंग 11:30। अब जिनके ऑफिस से वो तो नहीं आएंगे, लेकिन लेडीज़ के लिए बहुत अच्छे मैसेजेस है। मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर पढ़ूंगा कल से, मैं टॉपिक का अनाउंसमेंट नहीं करता, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 11:30 टुमारो मॉर्निंग ऑन सफीनतुल नजात एंड अली टीवी। सफीनतुल नजात पे होगी एंड अली टीवी पे होगी। तीन मजलिसें हैं, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे मॉर्निंग 11:30 टिल 12:30, जुमे से पहले खत्म हो जाएगी कल से इंशाल्लाह। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद,
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद।
तो बस दोस्तों, तो सबसे पहली चीज क्या है, अपने गुनाह का एक्सेप्टेंस। तो जब ज्यारत को जाओ इमाम हुसैन की, तो पहली चीज क्या करो, टेलीफोन। दूसरी चीज सलवात, सिर्फ सलवात पढ़ते रहो। आप सोचो कि अगर बात यहीं पे छोड़ी थी, फिर पलट के मैं वहीं आ गया। अगर आपने सलवात मिसाल के तौर पे आपने शुरू किया, दिन भर में 1000 मरतबा आपने सलवात पढ़ी, तो आपको अंदाजा है कि आपके पास रहमत कितनी है। अजीब बात क्या है, हुसैन के पास पहुंचने से पहले ही रहमत आ गई। मैं क्या बोल रहा यार, क्या बोल रहा हूं यार, मुझे मालूम है, मुझे अब आदत हो गई खामोश सुनने वालों का। तो अब सोचो मौला हुसैन के पास पहुंचने से पहले आपके पास रहमत आ गई। 1000 मरतबा कोई सलवात पढ़े, एक सिटिंग में अगर कोई सलवात पढ़े, एक सिटिंग 1400 टाइम्स, एक घंटा लगता, 14 तस्बीह पढ़ना है, आहिस्ता पढ़े तो। अगर एक सिटिंग में तुम 1400 मरतबा सलवात पढ़ो, अब पढ़ के अल्लाह की बारगाह में दुआ करके बोलो पढ़ो देगा, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। आप पूरी लिस्ट रख लो, पहले लिख लो पूरी लिस्ट, मांगना क्या है। जब आप दुआ मांगना रास्ते पर मौला हुसैन की बारगाह में, या सलवात पढ़ो या इस्तगफार करो। और एक बात बोलूं, नजफ अशरफ से शुरू कर रहे ज्यारत, ज्यारत भी चल रही ना पूरी बात, सिर्फ 4 सलाम मौला हुसैन को करते हुए चलो, सलाम अल हुसैन वाला अली अब्दुल हुसैन वाला औलाद हुसैन वाला सलाम, ये पढ़ते हुए जाओ। आप सोच कि कितनी मरतबा तुमने सलाम किया और कितनी मरतबा तुम पहुंचने से पहले हुसैन ने तुमको जवाब दे दिया। आप सोच रहे ये बात, कितना सवाब हो रहा। देखो दोस्तों, सवाब तो दे रहा परवरदिगार, हमको लेना नहीं आता। हम अपने चक्कर में कि मैं तो बहुत बॉम्बे का सबसे बड़ा हूं, मेरे मुझे क्या करना है। पहले गुनाहों का एक्सेप्टेंस, बार बार इस पे स्ट्रेस कर, उसके बाद ये सारे अमल करते होगा। और जब करबला इंसान पहुंच जाए, करबला पहुंचने के बाद अब कल जब्बात छोड़ेगी वहीं से लेके चलता, कि वहां पे दुआ ये करना कि मौला हमको शफात अल हुसैन आपकी शिफात में नसीब हो। बगैर हुसैन की शिफात के कुछ मिलने वाला नहीं, यकीन करो कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर मौला लाख बार खुदा ना खास्ता मौला अगर निगाह फेल ले तो खत्म होगी जिंदगी। इसमें और एक चीज क्या है, अरबईन में या किसी ज्यारत में, अब जा रहे हैं आप ज्यारत में, माशाल्लाह आप तो अरबईन ही सर के हो, अरबईन की ज्यारत के लिए जा रहे हैं, हर आदमी दुआ करे और ये दुआ पढ़ते रहे कि अल्लाहुम्मा अरज़क़नी फ़ी दुनिया ज़ियारत अल हुसैन, ये बोलते रहे। बोलते हुए ये सबसे पहले चेक करना कि मैं मौला हुसैन की जो सीरत है, सीरत है इमाम हुसैन की बात कर रहा हूं, कि आज मैं मौला हुसैन की एक काम यह करूं कि अरबईन से पहले लोगों को माफ कर दूं, फॉरगिव करो। वो व्हाट्सएप वाला फॉरगिव नहीं, इफ आई हर्ट यू आई एम सॉरी एंड चला गया बंदा, वो सॉरी नहीं चलता, पर्सनल सॉरी, पर्सनल माफी। एक एक के बाद जाके माफी मांगो। सबसे पहले क्या करो, अगर तुम्हारी मां जिंदा है, बाप जिंदा है, तो उनसे जाके बोलो आई एम सॉरी मॉम, आई एम सॉरी डैड। वो सबसे पहले तुम्हारी दुआ, अगर तुम्हारी दुआएं रद्द हो रही, दुआएं कबूल नहीं हो रही, तुम प्रॉब्लम्स में आ गए, तो तुम माँ की लहत पे जाओ, पेंटी बैठो, बाप की लहत पे जाओ, सराहने बैठो, वहां पे ज्यारत इमाम हुसैन पढ़ के ये बोलो कि माँ तू मुझे माफ कर दे। हो सकता तुमने इतने दिनों से माँ को याद ही नहीं किया, इसलिए तुम ये परेशानी हो जाती। हो सकता इतने दिनों से तुमने बाप के लिए फातिहा नहीं पढ़ी, हो सकता इतने दिनों से तुम माँ की ग्रेव पे नहीं गए, बाप की ग्रेव पे नहीं गए, हो सकता तुम आराम का आराम बाग गए लेकिन वहां मां के पास नहीं गए, वहां मां नाराज हो गई तो तुमको पूरी परेशानियां घेरेंगी, तुमको तुम्हारी परेशानियां तुम्हारे सामने आ गए। चेक करो, चेक करो कि तुम कहां तुम्हारे से लैक हो रहा, चेक करो कि कहां तुमसे गलती हो रही। अगर वो गलती हो रही तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये सबसे पहले मैं आपको वो चीजें बता रहा। मौला हुसैन की, मौला हुसैन की ज्यारत को जाने से पहले अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा है तो उनसे परमिशन लेके जाना, उनके पास जाके उनको बोलना कि माँ मैं करबला जा रही। और एक बात बोलूं, ज्यारत इमाम हुसैन अगर तुम अपनी माँ के को लेकर जाओ या बाप को लेकर जाओ, खुद लेके जाओ, उसके बाद देखो कि तुम्हारी ज्यारत कैसे कबूल है। वो ज्यारत प्लीज बोलो, वो ज्यारत कभी रद्द नहीं होती जो माँ बाप के साथ इमाम की ज्यारत होती, तो कभी रद्द नहीं होती। अगर तुमने अपनी बूढ़ी माँ को लेकर गए, तुम अपने बाप को लेकर गए, वो ज्यारत कभी रद्द ही नहीं हो। वो ज्यारत कबूलियत है, ज्यारत वो है कि तुम्हारे साथ तुम्हारा बाप जा रहा, तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ जा रही, इसलिए कि जो तुम्हारा ज्यारत इमाम हुसैन को जा रहे, जस्ट बिकॉज ऑफ देम तुम्हारे डैड और माम की तरफ से तुम जा रहे कि वो लोग नेक थे, वो लोग हलाल खिलाए, तो तुम्हारे हुसैन की ज्यारत कौन, जो तुम दुआ कर रहे कि फिर दुनिया ले ज्यारत देखो, फिर दुनिया ले ज्यारत देखो, तो ये दुआ करो, हमेशा ये दुआ करो कि अल्लाह तू मुझे इतना काबिल बना दे कि मैं इतना एफर्ट कर लूं कि मैं अपने माँ बाप के साथ जाऊं। अगर तुम 10 दफा गए हो, तुम्हारी माँ 5 दफा गई है, तो तुम्हारी ज्यारत क्या है, तुम बैठ के बोलो माँ तू जाओ मैं बैठा हुआ, बाप डैडी आप जाइए मैं बैठा हुआ, अपने पैसों से भेजो। अल्लाह वही अजर अता करेगा जो तुम अपने माँ बाप को भेजने में, जो तुमको मिलने वाला है। ये नहीं कि सेल्फिशनेस नहीं है इस्लाम में कि मैं करूं, तुम्हारा बाप करा, तुम्हारी मां करी, अगर तुम 10 दफा गए वो 5 दफा गए, क्या उनका दिल नहीं है? क्यों है? प्लीज गौर से सुन, इसका अजर क्यों है? इसलिए कि आज तुम्हारा बाप तुम्हारी मां एफोर्ड नहीं कर सकती, तुम एफोर्ड कर सकते। आज मां बाप तुम्हारे डिपेंडेंट है, कल तुम डिपेंडेंट थे। क्या बोल रहा मैं? क्या सुन रहे यार? आज डिपेंडेंट है तुम्हारे मां बाप, वो मुंह खोल के बोल नहीं सकते कि बेटा मुझे लेके जा, इसलिए कि बेटे की खुशी है, दोस्त है बेटे के साथ, बेटा चाहता है कि वो ज्यारत करे, मना नहीं करा, आई एम नॉट स्टॉपिंग यू। लेकिन आज बोल नहीं सकते, बूढ़े हो गए, आज वो बोल नहीं सकते। तुम कल नहीं बोल सकते थे ना, तुमने बोल दिया था, बेटा मां को बोलता, बेटी मां को बाप को बोलती। तुम अगर अपने मां बाप को कराओ, इससे बड़ी बात मैं मिंबर से बोल रहा, तीसरी मजलिस गुलिस्तान हिंद की, एक एक जुमले का जिम्मेदार हूं, और आई एम सेइंग अभी 7 दिन हूं आपके शहर में, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मेरी ख्वाहिश है आपसे, क्या अगर तुम्हारे मां बाप मिसाल के तौर पर मर गए, अब क्या करना? अब कैसे लेके जाएंगे? तुम क्या करो, किसी गरीब को भेजो, नीयत ये करो कि मेरे मरहूम बाप की तरफ से कराओ, ये मरहूम मां की तरफ से कराओ। तुम तस्वुर नहीं कर, सोच ही नहीं सकते कि तुम्हारी मां नीचे से दुआ देगी, तुम्हारा बाप नीचे से दुआ देगा, और मरने के बाद भी मां बाप की, इसलिए कि आज तुम्हारी मां मजबूर है मर गई, तुम्हारा बाप मजबूर है मर गया, वो मनो खाक के नीचे, वो नीचे पड़ा हुआ है, उसको कोई सवाब कहीं से नहीं मिल रहा, तो मिलेगा कैसा? जब हुसैन की जियारत, अरवईन की जियारत का जो अजर मिलेगा उसको, वो पूछेगा ये कहां से आ गई इतनी परेशानी, इतनी रहमत, तो बोलेगा कि तेरे बेटे ने हुसैन की जियारत करवाई है एक मोमिन को, उसका अजर तुझे मिल रहा। तो अब जैसा हज बदल होता, हज बदल कराते तुम, उसी तरह जियारत बदल अपने वालिदैन की करो। उसके बाद देखोगे तुम्हारा अजर क्या मिलेगा, तुम्हारे रास्ते कैसे खुलेंगे। मार्केट में बोल के मत करो कि मैंने अपनी मां की जियारत कराई, बहुत बड़ा काम कर दिया, ये नहीं, मैं अपने बाप की जियारत कराई, बहुत बड़ा एहसान कर दिया, नो। अगर वो तुम नहीं कर सकते, इसलिए कि माँ बाप बेचारे मजबूर है, सो अगर जिंदा है तो बोल नहीं सकते, बूढ़े हो गए, तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है, तुम बोलोगे नो आई डोंट हैव फंड्स, ये बोलोगे ना, इसलिए क्या जवान हो तुम, अपने माँ बाप के बदले में करो। बेहतरीन अमल फिर दुनिया से आदत यह है कि अपने लिए इस्लाम, एक चीज और याद रखो, इस्लाम में सेल्फिशनेस नहीं है, फॉरगिवनेस है, माफी है। इस्लाम का बेसिक मैसेज माफी है, बेसिक मैसेज माफी है, सिर्फ माफी, माफी के अलावा इस्लाम को कोई बात ही नहीं करता। अगर अल्लाह अपनी अपने जात पे, अगर अल्लाह तवाब रहीम नहीं रहता ना, फिर बोल रहा बहुत से बच्चों के लिए, यूथ के लिए बोल रहा, अगर अल्लाह तवाब रहीम नहीं रहता ना, अल्लाह माफ करने वाला नहीं रहता ना, तो दुनिया में कोई जन्नत में नहीं जा सकता था। कोई नहीं जा सकता, जा ही नहीं सकता था। मैं मासूमी, खुदा ना खासा मासूमीन की बात नहीं कर रहा, खानदान अहले बैत की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल पब्लिक की बात कर रहा, जनरल पब्लिक, कोई जा सकता था? सारे के सारे जहन्नम में जाते। अगर अल्लाह के पास ये सिफत नहीं रहती, तवाब रहीम नहीं रहता, अल्लाह माफ करने वाला नहीं रहता ना, आप इंसाफ से बोलो, हमारे पास जो थोड़ा इख्तदार मेरे पास आ जाए, मैं किसी को माफ करता? पूरे खानदान को गिना देता खड़े रहे, पूरी फैमिली को गिनाऊंगा, मैंने तेरे साथ ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, नहीं बोलते? 1000 वाकयात है हमारे पास, 1000 वाकयात है लोगों के, खड़े रह के जो बात करते पूरे माशरे में आपको खत्म कर देंगे कि मैंने तुझे उस वक्त ये किया था, उस वक्त ये किया था, उस वक्त ये किया था, उस वक्त ये, निकल जा, गेट आउट फ्रॉम हियर, ये बोलते। इसलिए आज मेरे पास इख्तदार है, आज मेरे पास पैसा, आज मेरे पास दौलत है, आज मेरा स्टेटस, ये तो फिरौनियत के अलावा और क्या है? फिरौन नहीं रहा बाबा, तुम कहां रहोगे? इससे बेहतर क्या है? फॉरगिवनेस। जिस शख्स में, गौर से सुनो जी, मैंने इतनी बड़ी बात बोली, अगर अल्लाह के पास फॉरगिवनेस नहीं रहती, एक आदमी जन्नत में नहीं जाता, सब जहन्नम में चले जाते, इसलिए कि मेरे गुनाह इतने कि मैं जिंदगी नहीं गुजार सकता। ये तो उसका करम है, इतना मर्सीफुल है कि उसकी रहमत उसके गजब पे गालिब आ गई। क्या बोल रहे यार, उसकी रहमत उसके जो गजब है उस पर ऐसा भारी आ गई। ये मेरे मौला का जुमला है, आबिद गुलरामी का जुमला नहीं है, मौला अली का जुमला है। मौला अली ने उस शख्स से क्या कहा था खाने का बाबा, वो जब बार बार बोलता मेरा गुना बड़ा, मेरा गुना बड़ा है, मौला अल्लाह माफ नहीं करेगा, अल्लाह माफी करेगा। अली ने कहा सुन, तेरा गुना बड़ा है या उसकी रहमत बड़ी है? क्या बड़ी है, क्या बड़ी है? वो एक मिनट रुका, रुके कहने उसकी रहमत बड़ी है। तो कहा जब रहमत बड़ी है तो मायूसी कैसे? बस मैं क्या करूं, मेरा वक्त हो गया, 50 मिनट्स हो गए, अभी तो शुरू ही हुई। एक सलावत पढ़ ले मोहम्मद वाले
मोहम्मद।
मुझे आज और भी एक चीज बोलना था जो मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर था, मैंने वादा भी किया था कि हस्बैंड के हुकूक वाइफ के ऊपर क्या है, अच्छी बात है, लेकिन एक दूसरा प्रेशर आ रहा था कि मत बोलो मत पढ़ो। लेकिन भैया जो हक है वो तो मेंबर का बोल रही कि शौहर का राइट्स, शौहर का हुकूक, औरत की राइट क्या है। आई एम सो सॉरी, मैं अपनी माँ बहनों को सॉरी बोल रहा हूं। टुमारो इंशाल्लाह, टुमारो आई स्टार्ट फ्रॉम दिस ओनली। इसलिए एक दफा जब फ्लो चलता ना तो मुश्किल हो जाती है। अब सामने मेरे पूरे मत बैठे हुए तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। आई एम सो सॉरी, इंशाल्लाह आई प्रॉमिस यू टुमारो इंशाल्लाह कल। लेकिन 9:15 पे जब मैं आऊंगा तो आई स्टार्ट फ्रॉम दिस ओनली। 5 मिनट के बाद ये टॉपिक पे आ जाऊं कि ये ज्यारत इमाम हुसैन में कितना बड़ा रोल प्ले करता। फिर सुनो, ज्यारत इमाम हुसैन में, अच्छा आज शबे जुमा के बारे में बोलना चाह रहा था, एक दो मिनट सुन लो कि शबे जुमा मौला हुसैन की ज्यारत कितनी इंपॉर्टेंस है। हर इमाम की ज्यारत शबे जुमा इंपॉर्टेंट है, लेकिन करबला करबला है, मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा। एक चीज याद रखो, शबे जुमा मौला हुसैन की ज्यारत अल्लाह हमको नसीब करे करबला मौला की। और जब करबला मौला शबे जुमा जाना, एक रिक्वेस्ट कर रहा मैं आपसे पूछता, क्या हमको यह पता है कि हम शबे जुमा मौला हुसैन के पास सभी जाते, हम इतना रश होता है मौला हुसैन के पास जाते फटाफट नमाज पढ़े जात पढ़े, ओ बहुत बहुत रश था ये था घर आगे होटल आगे। अब कौन में शबे जुमा की इंपॉर्टेंस में क्या है, जमाने के इमाम से करबला मौला में शबे जुमा मुलाकात होती, कितनी अफसोस है ना, कितनी मालूम है हमको, मालूम है, मैं जनरल पब्लिक की बात कर रहा, हमको मालूम है, हम के इस नियत के साथ जाते, कभी हमारे साथ चलो इंशाल्लाह, कभी मेरे साथ चले ज़ियारत, देन आई विल टेल यू। हमारे ग्रुप को मैं हमेशा बोलता हूं जब शबे जुमा हम पहुंचते हैं कि बाबा सुनो अब ना सबको एक मौका है मौला हुसैन की जमाने के इमाम की ज़ियारत है, इमाम हुसैन की ज़रिए के बाद। ये मौला का जुमला है कि हर शबे जुमा में अपने जद की ज़ियारत को जाता और मुलाकात इमाम में ये मिला कि करबला मौला में शबे जुमा जमाने के इमाम से मुलाकात होती, जैसा ट्यूसडे के दिन मस्जिद जमकरान और मस्जिद सहरा में के चांसेस है, फ्राइडे के दिन बैतुल मुकद्दस के है और अरफे के दिन मैदान अरफा के, उसी तरह मुलाकात इमाम की जो जगहें बताई गई वो शबे जुमा मौला हुसैन का रोजा है। हम जा रहे बस निकल के ज़ियारत करें वापस आके, बस दोस्तों इंशाल्लाह शबे जुमा के बारे में बोलूंगा, कल भी बोलूंगा, परसों भी इंशाल्लाह, जब भी आप शबे जुमा आए करबला के लिए ज़ियारत कीजिए। अल्लाह हमको शबे जुमा की मौला हुसैन की ज़ियारत नसीब करे, उसके लिए सलावत पढ़ ले बाबा से बोला। आज उस हस्ती का जिक्र के लिए मुझसे ख्वाहिश की गई, वो शहीद कि जिसकी निशानी हर घर में है, आप समझ गए, आज 13 मुहर्रम है, 14 मुहर्रम है, सैदानियों का काफिला जा रहा है, हर शिया के घर में पूरी दुनिया में इसकी निशानियां रखो रखो रखो, तुम अपने घर की परेशानियों को दूर करोगे अगर मौला अब्बास का आलम तुम्हारे घर पर रहे। लेकिन आलम खाली इस्ताद नहीं करना, इस्ताद करने के बाद फिर उसका एहतराम भी करना, रोज एक नोहा भी पढ़ना, पढ़ना नहीं आता इतने स्मार्टफोन पे डाउनलोड करो खड़े के नोहा पढ़ो मौला अब्बास का। और ये भी ख्वाहिश की गई कि वो दो वो बंद पढ़ो मीर अनीस के जो मैं अशरे अव्वल में पढ़ता हूँ रिजवी कॉलेज या कैसर बाग, मौला अब्बास का। दोस्तों एक घंटे की तकरीर तो एक तरफ, असल ये 5 मिनट मसाइल। आप लोग जहाँ भी बैठ के मेरी मजलिस सुन रहे, सब ज़ैनबिया चैनल के ऊपर, अली टीवी के ऊपर, सफीनतुल नजात पे, जहां भी जिस चैनल पे भी ये मजलिस सुन रहे गुलिस्तान हिंद, अगर सोफास पे बैठे हुए, कुर्सियों पे बैठे हुए, शूज पहने हुए, तो रिमूव योर शूज, रिमूव योर चप्पल्स एंड सिट प्रॉपरली. इसलिए असल चीज मसाइब, दो आंसू चाहिए, बीबी को कुछ नहीं चाहिए. सूखी आंखों से मजलिस में कभी नहीं बैठना, ना सूखी आंखों से उठना, ये याद रखो. तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी जिंदगी बदलती आंसू. जब तुम्हारी आंखों में आंसू आते ना, अपनी मुसीबतों को याद मत करो. जब तुम्हारी आंखों में आंसू आते, तुम हाथों को उठा के दुआ करो. और आज उस शहीद का जिक्र करो कि जब तक वो जिंदा थे, सैदानियों के दिल को सुकून था. मैंने कितनी आसानी से ये जुमला बोल दिया. बीबी जैनब के दिल को सुकून पहुंचाने वाले का नाम अब्बास है. सिर्फ शहजादी जैनब को नहीं, सारी बीबियों को सुकून पहुंचाने वाले का नाम अब्बास है. उसके बाद जिसको बीबी ने अपना बेटा कहा, उसका नाम अब्बास है. असली जो फातिमा जिसको बेटा कहा, उसके क्या मकाम है? मौला अब्बास उस हस्ती का नाम है कि जब 27 रजब को मदीने से काफिला 28 को चला है, 27 की नाइट को शहजादी जैनब ने मौला हुसैन से कहा था कि भैया मुझे नाना की लहत पे लेके चलो और अम्मा की लहत पे लेके चलो. तो आखिरी मरतबा, दोस्तों तड़प के रोगे, आखिरी मरतबा 18 भाइयों ने बहनों को घेर लिया. मौला अब्बास सामने सामने चल रहे थे. ये आखिरी मरतबा है मदीने वालों ने फिर बीबी जैनब को भाइयों के साथ ऐसा नहीं देखा. 27 रजब की रात है, पूरे भाइयों के साथ शहजादी नाना की लहत पे, अल्लाह को बीबी मौला की ज़ियारत नसीब करे इंशाल्लाह. आके बीबी ने अपने रुखसारे को खबर रसूल पे रख के कहा, नाना आपकी जैनब आई. नाना मैं जा रही करबला, खुदा हाफिज. वहां से ये छोटा सा काफिला माँ की लहत पे आया. जब माँ की लहत पे आया तो बीबी ने माँ की लहत से लिपट गई, कहा अम्मा खुदा हाफिज. मौला हुसैन ने अपने रुखसारे को रख के कहा, अम्मा अम्मा मैं जा रहा करबला के लिए. उसके बाद का जुमला सुनना, कहा अम्मा जब भी मैं पुकारूंगा मेरी मदद को जरूर आना. ये बीबी ने, मौला हुसैन ने कहा, यहाँ पे बीबी जहरा की आवाज आई है कब्र से. उसको मीर अनीस ने अपने मरसिए के बन में कहा कि किस तरह से तड़प कर फातिमा ने मौला अब्बास को याद किया. जैसे ही हुसैन ने कहा कि अम्मा खुदा हाफिज, तो बीबी जहरा की एक आवाज जिसको मीर अनीस ने अपने मरसिए में कहा कि हाँ बुलाओ मेरा अब्बास दिलावर है किधर, हाँ बुलाओ मेरा अब्बास दिलावर है किधर. अरे वो फिदा है मेरे बच्चे पे, मैं सदके उस पर. ये माँ बीबी जहरा बोल रही, वो फिदा है मेरे बच्चे पे, मैं सदके उस पर. शिकमे गैर से गो है पव मेरा है पिसर. ये सदा सुन के बरादर को पुकारे सरवर के, अभी रहवार को आगे ना बढ़ाओ भाई, याद फरमाती है अम्मा इधर आओ भाई. आके अब्बास ने सर रख दिया पाई ने मजार, आई जहरा की सदा मैं तेरी गुर्बत के निसार. अपने प्यारों के बराबर मैं तुझे करती हूँ प्यार, ध्यान भाई की हिफाजत कर रहे है दिलदार. अरे कोई गुर्बत में इसे मान न डाले बेटा, मेरा शब्बीर अब तेरे हवाले बेटा. ये फातिमा की आवाज थी जिसे करबला में अब्बास के किरदार को पेश किया. बस दोस्तों, मौला अब्बास की याद हर मंजिल पर आई. शहादत के बाद, बस मैंने मदीस खत्म कर दी, शहादत के बाद हर मंजिल पे पहला तमाचा सकीना को लगा, उस वक्त भी उसने अब्बास को याद किया. इमाम के पीठ पे ताजियाने आए, चचा को याद किया. खैमे जल रहे थे तो जैनब ने अब्बास को याद किया. शाम गरीबा में सकीना नजर नहीं आ रही थी, अब जैनब ने यही कहा था कि भैया अब्बास मेरी बच्ची नजर नहीं आ रही. 11 मुहर्रम को जब यह काफिला चल रहा था, तब जनाब जैनब ने हुसैन को नहीं पुकारा, बल्कि अब्बास को याद किया कि अब्बास तुम कहाँ हो भैया, उठो बहन को सवार करो. मौला अब्बास की याद मुसलसल आती रही. बस एक मंजिल पढ़ो और आपकी जहमत को तमाम करो. आज 14 मुहर्रम की मजलिस है. जब ये लुटा हुआ काफिला इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंचा, मैंने कितनी आसानी से कह दिया कि इब्ने ज़ियाद का दरबार और सैदानी पहुंच गई. जब एक गोशे में ठहरे हुए थे तो इब्ने ज़ियाद के सामने मौला हुसैन का सर मुबारक रखा हुआ था तश्ते दिला में, उस पर कपड़ा था. इब्ने ज़ियाद ने इशारा किया कि उस कैदी को लेकर आ. दरबार में जंजीरों की आवाज़ आई. एक कैदी आया जिसका नाम था मुख्तार, वो आके इब्ने ज़ियाद के सामने ठहर गया. तो इब्ने ज़ियाद के एक वजीर ने मुख्तार से कहा कि मुख्तार क्या तुम अपने अमीर को सलाम नहीं करते. वो इब्ने ज़ियाद की तरफ इशारा किया तो मुख्तार ने दरबार में बड़ी आवाज़ से कहा कि मैं इसको सलाम करूं? अरे मेरा अमीर तो हुसैन है, मैं बस हुसैन को सलाम करता हूँ, बस मैंने मजलिस खत्म कर दी। जब इब्ने ज़ियाद की ये जिल्लत हुई तो उसने कहा मुख्तार क्या अपने हुसैन से मिलेगा, तो मुख्तार ने इतने यकीन के साथ कहा कि मेरा हुसैन तेरे दरबार में क्यों आएगा, बस उसने कपड़े को हटाया। अजीजो मुख्तार ने कटे हुए सर को देखा, यकीन नहीं आया कि मेरे हुसैन का सर है। मुख्तार चाहते थे कि आगे बढ़ के इब्ने ज़ियाद पे हमला करे, पीछे से आवाज आई मुख्तार ठहर जा। अब जब पलट के देखा चौथा इमाम जंजीरों में जकड़ा हुआ, इमाम ने कहा कि मुख्तार घर लूट गया। उसके बाद इमाम का जुमला कि मुख्तार अपनी आंखों को नीचे कर ले, अरे ये ज़ैनब है, ये उम्मे कुलसूम है, मुख्तार हमारा घर उधर गया, मेरा बाबा ज़िबा कर दिया गया। परवरदिगार समी का आमीन बोलना। अरे मौला अब्बास के मसाइब का वास्ता, मेरे बीबी ज़ैनब बीबी उम्मे कुलसूम चौथे इमाम का वास्ता, हमारी मुख्तसर सी मजलिस अल्लाह तो कबूल कर ले, ये मजलिस बीबी ज़हरा की बारगाह में कबूल हो जाए। परवरदिगार मेरे मौला हसन के मसाइब का वास्ता, गुलिस्तान हिंद के सारे मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमा, जो ये मजालिस करा रहे अल्लाह इनकी तौफीकात में इजाफा फरमा। जितने लोग कोविड में मुब्तला हैं, जितने बीमार हैं पूरी दुनिया में, अलाबामा भी है और यहाँ पे भी कुछ कोविड के पेशेंट्स हैं, कुछ कैंसर के पेशेंट हैं, हैदराबाद में भी कैंसर का पेशेंट है, बॉम्बे में भी है, अल्लाह चांद जा जो जो बीमार है, बेख बीमार है, करबला बीमार है, मदीना शहजादी सगरा का वास्ता, अल्लाह सबको सेहत कामिला अता फरमा, जो बीमारियां हमारे जिस्मों में उसको दूर कर दे, हर आने वाली बीमारी से महफूज रख, ये कोविड से सारे मौला हुसैन के चाहने वालों की हिफाजत फरमा, किसी का मोहताज मत बना सिवाय तेरे और मोहम्मद और आले मोहम्मद के। अल्लाह तो जन्नतुल बकी, जन्नतुल मौला, जनाब हमजा और अहले बैत की खबरों पर साया कर दे और रोशन कर दे। सीरिया में सैदानियों के रोजों की हिफाजत फरमा, अरबईन के लिए रास्ता खोल दे कि मौला हुसैन की ज्यारत कर सके, हमारे इमाम ज़माना जल्लल्लाह ताला फरजो शरीफ को सलामत रखे, आज शबे जुमा है, जिनके माँ बाप जिंदा है उन्हें सलामत रखे, जिनके माँ बाप मर गए उनकी कब्रों में रहमतों को नाज़िल फरमा, अल्लाह मेरे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको इमाम के नासिरों में शुमार, और एक सूरह फातिहा सारे मरहूमीन के लिए मैं पढ़ा, फिर एक दफ़ा पढ़ दें प्लीज़, गुलिस्तान हिंद के सारे मरहूमीन, सलीम दनानी मरहूम मोहसिन इब्ने प्यार अली मसानी मूसा भाई हुज्जत अल इस्लाम मौलाना शेख हसन मूसा और कुल मरहूमीन और मरहूमा रजिया नूर मोहम्मद, सारे मरहूमीन के लिए सूरह फातिहा।